चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै गुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृता सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे ये कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते प्रणमामि धरी यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्गोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मां तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वयापि न इति विज्ञाय राधे तं नयमां। तदा तदुपधारीय मुकुंद गीता आवर्तलक्षित मनो भव भग्न वेगा आलिंगन स्थगितोर्म भुजैर्मुरारे गृहणन्ति पादजुगलं कमलोपहारा। नद्दस्तदातुपधारी मुकुंद गोप विभा में आवेश परीक्षित महाराज जी अपनी मैया को गोपी गीत में से दृष्टात्पते ब्रज प्रसून सा राम गोपी में मेघों का कृष्ण से सत्य भाव का वर्णन और निस्वार्थ रूप में कृष्ण प्रीति के लिए कृष्ण की सेवा करने के लिए बदले में कुछ नहीं चाहने चाहते हुए कृष्ण की ये सब सेवाएं कर रहे हैं। गोपियां भी तन्मय होकर के कह रही हैं, जिस चीज का वर्णन करती हैं उनमें वे आवेश हो जाती हैं। इसलिए भजन किसको कहते हैं? साधन से कुछ अंशों में भजन बड़ा है, भजन में आविष्ट होता है, जब तब वो भजन होने लगता है। साधन ही बिना वेस्ट के वो साधन ऐसे है, जब वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जबकि ये तन्मयता आने लगती है और जिस समय वो वर्णन करता है या श्रवण करता है सारी चित्त की वृत्तियां उसी में तन्मय हो जाती हैं, तब वो भजन कहलाता है। जैसे अष्टकालीय भजन, उसमें घंटों घंटों हमारे गोस्वामी लोग बैठते हुए उसका चिंतन करते, ये किस स्थिति में संभव होगा? इस स्थिति में साधन अवस्था में अनर्थ बहुत रहते हैं, बहुत अनर्थ। भाव अवस्था में अनर्थ तो रहते हैं, कुछ उनका गंध रहता है अनर्थ, वो साधक के विरुद्ध आचरण नहीं करते, कुछ अनिष्ट नहीं करते, वो दब जाते हैं मूर्छित रूप में, मूर्छित कसाय जैसे। और प्रेम अवस्था में उनका गंध भी नहीं होता अनर्थों का, एकदम गंध नहीं रहेगा। साधन अवस्था में पहले सब कुछ प्रतिकूल होता है, साधन इसीलिए कि हम क्रमशः ऊपर उठते हुए धीरे धीरे सब कुछ को परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लें, उसमें प्रतिकूल अधिक अनुकूल कम। और भजन करते 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 रुचि और आसक्ति में ये अनुकूलता अधिक बढ़ने लगती है और प्रतिकूलता कमने लगती है, अभी हम लोगों में प्रतिकूलता अधिक है, इसीलिए चित्त चंचल, इसमें चित्त स्थिर होकर के ये सब चिंताएं नहीं कर पाते। हरिनाम करते हुए, हरि कथा श्रवण करते हुए तन्मयता नहीं आती, और इसी कारण से अष्ट सात्विकार का आभास भी हमें नहीं। जितना ये सब प्रतिकूल भाव दूर होगा, अनर्थ दूर हो, अनर्थ माने और तो जो है सो है, संसारी सुख सुविधाओं की प्राप्ति की लालसा, जिसे हम इस अवस्था में सुख समझते हैं, संसारी इच्छाएं, भोखिलासा होगी, अर्थ जरूरत, अर्थ की इच्छा रहेगी, अर्थ रहेगी इच्छा तो चित्त चंचल होगा ही, सुख दुख वो आएंगे, भजन में मन, इसलिए ये सब चीजों को दूर करके इस चीज को पाने के लिए जरा हृदय निर्मल होना चाहिए, अंततः सत्व होना चाहिए। सत्व माने कृष्ण के नाम रूप गुण लीला द्वारा आक्रांत चित्त, ये सत्व होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये चीजें नहीं होंगी, इसलिए परीक्षित महाराज जी भाव अविष्ट होकर के ये कर रहे हैं। अभी तो ये बतला रहे हैं जो सुखदेव गोस्वामी भाव में तन्मय होकर के गोपी भाव को प्राप्त कर लिया है, और आगे चल करके बतलाएंगे सुखदेव गोस्वामी भी जब राष्ट्रपंचाध्यायी गोपी वेणुगीत और राष्ट्रपंचाध्यायी भ्रमर गीत इत्यादि का जब वर्णन करने लगे तो वो भी गोपी भाव को प्राप्त कर लिया। आगे ये शायद आएगा सर, ये ऐसा ही विषय है जिसका हृदय निर्मल होगा, संसारिक वासनाएं नहीं रहेंगी, मुक्ति की लालसा भी जब दूर हो जाएगी तो ये अपने आप प्रकट होता है, लीला कथाएं अपने आप रस का अनुभव करने लग जाएगा। जब तक कुछ अनुभूति नहीं होती है तब तक ये कष्ट है, तब तक साधन में क्लेश होता है, बहुत बड़े बड़े कष्ट कर काम हम कर लेंगे, किंतु दो मिनट बैठ करके चित्त को स्थिर करके इन चीजों का चिंतन करके इसके गुण एकदम प्रवेश कर जाएंगे। ये विशेष करके ये जो श्लोक है नदस सदा उपधार्य भी है। अभी तक गोपियां अपने भावों को छिपा रही थी, जिसको कहते हैं अवहित था, छिपा रही थी, किंतु यहां नदियों को देखा, नदियां कहें स्त्री, स्त्री भाव से वो देख रही हैं, है तो पानी जा रहा है एक नदी के एक कहीं जगह है थोड़ी सी और उसमें बहता हुआ पानी चला जा रहा है, साधारण रूप में इसका अधिक कुछ मूल्य नहीं। गोपियां किस रूप में देख रही हैं, परम भाववती अपने से भी श्रेष्ठ उन नदियों के भाव को सहेली सखी के रूप में देख रही हैं। यह नदी नहीं है, वो नदी के रूप में उसमें भाव रूपी अमृत बह रहा है, भाव बह रहा है, भाव प्रवाहित हो रहे हैं, वो इस चीज को देखती है और देखते हैं कि ये नदियां क्या हैं, मेरी एक तरह से प्रतिद्वंदी सहेली है, प्रतिद्वंदी हमारे सामने देख करके हम देख रहे हैं और कृष्ण को इतना प्यार कर रही हैं और कृष्ण को वशीभूत कर लिया इन इन भावों से, इसलिए गोपियां इस रूप में देख करके तदात्म्य हो करके, तदात्म्य से भी अधिक हो करके और जिसका वर्णन कर देखो तो सही, देखो तो ये यहां पर देखते ही राधा, ये और सबका कथन और गोपियों का होगा, किंतु यह कथन किसका, श्रीमती राधिका जी, क्योंकि उसमें पूर्णा पुलिंद उर्गाय और ये दोनों बहुत ऊपर के विचार है, इसलिए श्रीमती राधिका जी अपने आवेग को रोक नहीं सकी और अब तक जो छिपा करके कह रही थी राम चरण स्पर्श प्रमोदः या और सब में धन्याश्व मूढ़ मतयो हरण्य एता निरीक्ष, ये सब जो बतला रही थी रूपशील है। अभी तब भाव गोपन करके इनका वर्णन करे कि तुम ये वर्णन करते हैं, उनका भाव एकदम उन्मुक्त हो गया, कंट्रोल नहीं कर सकी, और एकदम अपने भावों को जो उनके हृदय में है उसका ये व्यक्त करता। न दस सदा, इसका सबसे पहले हमने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के किसी व्याख्या में इसको हमने सुना था। ये बहुत ही सर्वोत्तम ये भाव उन्होंने इसको वर्णन किया था, कहीं उनका पढ़ा था, अब याद ही नहीं कहां पढ़ा, तभी से इस श्लोक के प्रति हमारी रुचि हुई। श्रीमती राधिका जी कह रहे हैं, सखीरी न दस सदा तदुपाधान के बीच सखी सखी मुकुंद के वेणु गीत को सुन करती। मुकुंद भी किस लिए कहा इसका भी बतलाएंगे। नदियां आवर्त के छल से कामोच्छ्वास को प्रकाश कर रही, उच्छ्वास किसी चीज का उच्छ्वास होता है, कभी आनंद का उच्छ्वास, कभी शोक का उच्छ्वास, कभी दुखों का उच्छ्वास। जब उच्छ्वास आएगा तो उस अपने शरीर पर कंट्रोल, मन पर कंट्रोल नहीं रह सकता, काम का उच्छ्वास भी रहे, इतना आनंद का उच्छ्वास होगा ये हृदय तो आनंद में उपलब्धि हो रही किंतु शरीर पर भी कंट्रोल नहीं रहेगा। इस तरह से सुन देख करके प्रकाश कर लिया था। नदियां भी आवर्त के चलते इस तरह से और काम के इच्छा को भीतर में नहीं रोक पाती, वो ऊपर में प्रकाशित हो जाता है और इस प्रकार से कामोद्रेक वशतः भग्न तरंगा, उनके तरंग भग्न हो जाते, तरंग रूप बाहुओं से, जबकि उनका तरंग भग्न हो जाता है कैसे, जो सीधा जा रही थी नीचे प्रवाहित होकर के ऊपर से आकर के नीचे जा रही थी, तरंग तो भग्न हो गई तो नीचे वाला जाना बंद हो गया, स्थिर हो गया, पानी नीचे नहीं जा रहा और ऊपर से पानी आ रहा है सुनने के लिए ऊपर से, और नीचे वाला जा नहीं रहा। जैसे यहां पर जन्माष्टमी इत्यादि में भीड़ होती है, निर्गम बंद हो जाता है, आगम होता रहता है, आने वाले आते हैं और जाने वाले जाते नहीं, सब सीढ़ियों में रुक जाते हैं, उनकी धारा प्रवाह जो आने की थी और ऐसे जाने की वो बंद हो गई, ऐसे नदियों का प्रवाह बंद हो गया। कृष्ण का रूप ही इतना मधुर है, वेणु की इतनी मधुर है, उसको सुन करके पानी जो कण कण वाले हैं वो जा नहीं रहे, ठीक हो, और ऊपर से प्रवाह आ रहा है, उसमें गति भंग हो गई। भंग होने से क्या, पानी बढ़ गया, उसमें उत्ताल तरंगे आने लगी, उसमें यमुना में हजारों हाथ हो गए, बाहु लाखों, एक एक तरंग एक एक खुजा और कमल का उपहार लेकर और कृष्ण के चरणों में वो अर्पित करके उनकी पूजा करने लगे। ये तो हुआ अब श्लोक पर। अब साधक जो साधन करता है इतने से संतुष्ट नहीं होता, सनातन गोस्वामी इससे तृप्त नहीं हुए, उनकी तृप्ति बढ़ती गई, एक एक शब्द में डूब गए और एक एक शब्द का तात्पर्य क्या है ये भीतर से, जैसे खनी, खनी होती है ना, खनी माई, उसमें से भीतर से ला रहे हैं, कोयले की खान से हीरा निकाल रहे, ये तात्पर्य। जैसे क्या सखी छाड़ो रे अली छाड़ो रे हठ, क्या मान नहीं करो अली, हठ छाड़ो रे, हाँ ऐसो मान नहीं कीजो। अच्छा इसका क्या अर्थ है, जो गाते हैं कोई समझते हैं कि नहीं, हमको तो पता नहीं, किंतु हम लोग सुन करके उसमें चिंता करते हैं। हाँ सुनो, मान मत करो, इसका क्या तात्पर्य? दोनों में विवाद कुछ हुआ है, और जो झूलने के लिए जा रही थी उन्होंने झूलने के लिए जो कपड़े पहने थे उसको उतार दिया और रूठ करके बैठ गई, अब नहीं चढ़ूंगी जाऊंगी। वहां से अपने घर में लौट गई या जहां भी हो वहीं पर उतर करके मुख फेर करके बैठ गई। कृष्ण ने बहुत माना, मनाया। सुबल ने मनाया, कोई किसी से नहीं मानी, न कपड़े पहन रही है न तैयार है जाने के लिए। ये साग सिंजार वो कल के लिए पहन रही है, जाने के लिए तैयार हो, बहुत सुंदर बनाया। और उन्होंने ये नहीं छोड़ दिए, सफेद या जैसे होते हैं वो कपड़े पहन लिए, अपन करके बैठ गई, किसी से बात नहीं। जब कृष्ण ने मनाया नहीं मानी, इसके बाद में विशाखा ललिता को भेजा, वो भी नहीं, बंसी से भी बुलाया नहीं आई, सुबल को बुलाया, सुबल भी आज तक गए, क्या करें। अंत में नहीं मानने पर ललिता जी और विशाखा जी दोनों सम्मिलित रूप में आ रही हैं और राधा जी को कह रहे हैं, अली हट को छाड़ो और ऐसो मान नहीं कीजो, हट छाड़ो री अली, हट छोड़ो, यदि कन्हैया चला जाएगा यहाँ से तो फिर तुम्हारा हट किस काम का आएगा, वो तो अब बहुत ही दुखी होकर के यहाँ से लौट रहा है और ये चले जाए और वो हाथ जोड़ करके खड़े हैं क्योंकि तुमने उनसे उनकी बात नहीं मानी, अभी तक भी खड़े हैं, मुरलिया उनकी तुम्हारे चरणों में रख दी है, अंतर का भाव यह होगा कि नहीं होगा? इतना समझ करके तो उसमें कोई डूब जाएगा। हमारे नरोत्तम ठाकुर की पदावली, नरोत्तम ठाकुर की पदावली भी सुना चुके हैं, भक्ति विनोद ठाकुर की, ये जब विभावरी शेष का जो अंतिम से कुछ पद हैं उसके ऊपर का भी, कदम्ब कानन रास परायण मानस चंद्र चकोर इत्यादि, ये सब हैं। ये सब में यदि कोई डूबेगा ना, ये साधन है। अरे जिसका मन विषय में डूब रहा है वो कहां ये सबको, ऊपर से कह देगा, देखेगा आज जैसे सब लोग देख करके हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि नहीं, ये देखेगा, वाह 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 वाह, उसी में किसी ने कह दिया वाह वाह, और ऐसे ऐंच करके 5 रुपये या 2 टका दे दिया तो वाह बहुत बहुत। अरे इसमें डूबे, ये साधन। इसलिए सनातन गोस्वामी को इसी श्लोक के इसमें इतने भाव दिखाई पड़े, इतने कि उसमें एकदम डूब गए। इसलिए वैष्णव तोषिणी में उन्होंने जो लिखा और लिखने के बाद में भी उनकी तृप्ति नहीं हुई, इसलिए बृहद भगवतामृत के अंत लिख करके अपने भावों को, इसको अनाधिकारी नहीं पढ़ेगा। भागवत को तो सभी बड़े बड़े पंडित लोग भी पढ़ेंगे, अनुभव जिसको नहीं है वो भी, विद्वान लोग भी पढ़ सकते, और इसमें ये विद्वानों की नहीं है, ये साधकों की, यहां अनुभव के द्वारा इसको, अनुभव गम्य साधन के सिद्धि के द्वारा अपने आप ही विषय की स्फूर्ति होगी। इसमें विद्वता इतनी रंचक मात्र भी काम नहीं करेगी, वो नहीं प्रवेश कर, उसका चंचु इसमें नहीं प्रवेश करेगा, किसका करेगा? ऐसा साधन करने वाला है वो एक एक शब्द को कितनी प्रकार से व्याख्या करेगा, कुछ नहीं कौ नहीं पढ़ा है, इसकी व्याख्या करके उसमें तन्मय हो जाएगा। ऐसे ही सनातन गोस्वामी कहने लगे, इस प्रकार से गोवर्धन जी की सौभाग्य की उन्होंने, गोवर्धन जी का इतना सुंदर वर्णन किया है सनातन गोस्वामी ने, यदि किसी को थोड़ी सी भी साधना होगी तो वो देखेगा ये कितना गहरा इनका भाव है। वृंदावन भूमि को पृथ्वी का सर्वोच्च स्थान बतलाया, और वृंदावन का सर्वोच्च स्थान, वृंदावन को रमणी के रूप में वर्णन कर रहे हैं, इस तरह से यहां पर भी वही है। न दस तदा उपधार्य मुकुंद गीत, उपधार्य माने क्या, पहले तो मुकुंद पूर्ववत वृंदावन का, ये वृंदावन की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। और वृंदावन भूमि के संबंध से उन्होंने गोवर्धन का वर्णन किया, और गोवर्धन के संबंध से पार्श्व में उनके नीचे बहने वाली यमुना के ऊपर उनकी दृष्टि पर गोपियों देखा जी, गोवर्धन नीचे थोड़ी ही दूर पर यमुनावती में यमुना बह रही है। यमुनावती कहाँ है, गोवर्धन के पास ही गांव, वहां पर कभी यमुना उस तरह से होती हुई यमुनावती एक स्थान है गोवर्धन से करीब करीब आध मील या थोड़ी सी दूर पर वो है, वहां से होकर के फिर इधर से होकर के ब्रज को चारों तरफ से घिरती हुई सर्पणी की भांति यमुना जी चलती है। जब वृंदावन को नहीं छोड़ना चाहती, जैसे गंगा नदी को छोड़ना नहीं चाहती, नौ भागों में ऐसे भी भक्त करके और घूमती रहती, अब यहां से निकले नहीं, ऐसे ये यमुना जी मथुरा देवी की बड़ी सहेली है, प्रिय सहेली है, इसलिए यमुना का स्मरण होया। होते ही भगवान की बड़ी कृपा पात्र महाप्रसाद भर ये यमुना जी हैं। यमुना जी विशेष करके क्रीड़ा की भूमि है, सखाओं के गायों को पानी पिला रहे हैं, उसमें खड़े हैं, यमुना जी उनका चरण धो रही हैं, स्नान कर रहे हैं, कृष्ण के सारे अंगों को आलिंगन कर रही हैं, विशेष करके गोपियों के साथ में जल क्रीड़ा करते हैं, तो उनकी महिमा ही और अपार है। इसलिए जितने भी कृष्ण के कृपा पात्र हैं, आज ये गोपियां देख रही हैं कि ये यमुना जी ही सबसे धन्य हैं। हम लोग तो उनका आभास या छाया तक भी नहीं हो सकती हैं, बहिर् दृष्टि से अचेतन दिख पड़ती है, नदी पर्वत अचेतन, गिरिराज भी अचेतन नहीं सचेतन, और उनमें भी सबसे श्रेष्ठ, और यमुना जी भी सचेतन। देखो यमुना जी का सौभाग्य और अपना सौभाग्य हम लोग देखें और तुलना करो, तो देखो वृंदावन की एक घास की तुलना भी अपने से करो, जिनके ऊपर में कृष्ण और गोपियां चरणों को देकर के चलती हैं, हम लोग का ऐसा कब सौभाग्य होगा। जल प्रवाहिनी नदी मानो कृष्ण का मकरंद लेकर के बड़े धीरे से शांत रूप में बह रही है, इथला करके, इथलाना माने, इथलाना किसको कहते हैं, बड़ी इथला रही है माने क्या, इथलाना माने गुमान से शरीर टेढ़ा हो जाएगा, ये सब उठाना है, इथलाना, तो यमुना ये जो टेढ़ी मेढ़ी बढ़ रही है, इथला रही हैं, अपने गुमान पर इथला रही हैं, ये ऐसा किसी का सौभाग्य नहीं। इस तरह से जल प्रवाहिनी, जल नहीं कृष्ण के अंगों की का मकरंद लेकर के ये बह रही है। मानो यहां पर सब जितने अभी तक वर्णन किया, अभी तक दृष्टवा तपे तक सब श्लोकों का सार, मानो ये यमुना जी में ये है, एक यमुना में सारी महिमाएं एकत्रित हैं। बड़े प्रेम के साथ में हमारे सुखदेव जी परीक्षित जी को और परीक्षित महाराज जी उत्तराचारी को ये वर्णन करते करते उनका लज्जा और धैर्य और मर्यादा सभी चीजें बह गई। सखीरी यमुना नद्या, नद्या है ना, नदी नद्य बहुवचन। यदि यमुना रहती तो अके एक वचन होना चाहिए, तो यहाँ पर नद्या बहुवचन कह रहे हैं। यदि अकेले यमुना के लिए कह रहे हैं तब तो सम्मान में आदर देने के अर्थ में बहुवचन, आदर में बहुवचन होता है आदर। जैसे आप बहुत ही सज्जन व्यक्ति, इस तरह से आदर में गौरव में बहुवचन। अथवा यहां पर मानस गंगा आदि, मानस गंगा थी कहां से आ रही थी, कहते हैं ये सोरों से आ रही थी, सोरों निकटतम गंगा का स्थान है, वहां से आ रही धारा उसमें रहती थी। यदि धारा उसमें नहीं होती और लंबी नदी नहीं होती तो गोपियां सहजी पार कर जाती इधर से उधर से, किंतु लंबी सी धारा थी उसमें करंट था, प्रवाह था, जिसमें कि कृष्ण नौका चलाते हैं या दूसरे नौका चलाते भी हों, और उसमें तरह तरह की क्रीड़ाएं होती हैं। तो इस तरह से मानस गंगा को भी कम मत समझो, यमुना का जितना सौभाग्य उससे कम मानस गंगा का है। और लौह वन में जो सरोवर है वो भी उस समय यमुना से जुड़ा हुआ, उसमें भी प्रवाह था। अब 5000 वर्ष में स्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियां बदल गई। अब कहां से पार करना जाता था, किंतु जहां तक मानसी गंगा वहां से लेकर कब जिधर से आई थी वो सब नदी के रूप में था, अभी भी उसका प्रवाह देखा जाता है। अभी बरसात में जाओ पानी एकदम मीलों लंबा चला गया है उत्तर उधर में, उत्तर की तरफ में। नीचा खाल है वो मानसी गंगा से लेकर के निकलता है और उधर से खाल होकर के उधर में चला गया है, राधा कुंड पार करते हुए चला गया है। तो मानस गंगा और भी नदियां सरस्वती ने दी उसमें दी थी, जिसके किनारे नंद बाबा आकर के ठहरे थे, और जहां पर कि सर्प ने वहीं पर पकड़ा था ना, वहीं पर। तो ये सब नदियां थी सरस्वती, जिसमें गंगा और यमुना, जहां यमुना और सरस्वती मिलती थी वो घाट है, कौन सा घाट, कृष्ण गंगा घाट, जिसके बीच में ही व्यास जी का जन्म हुआ। तो ये सब नदियां अथवा सर्वश्रेष्ठ नदियों में श्रेष्ठ भागवत प्रिया कालिंदी, समस्त नदियों समस्त गिर पर्वतों में श्रेष्ठ हैं गिरिराज, देखने में छोटे, ये छोटे किस लिए हैं, नव किशोर हैं ये गिरिराज जी, और हिमालय इत्यादि बहुत बूढ़े और कोई 70-80 वर्ष वाले बूढ़े जैसे लोग हैं, और गिरिराज जी अभी कैसे हैं, अभी किशोर अवस्था या पौगंड अवस्था वाले हैं, इसलिए इतने सुंदर और समस्त लोगों में परम सुंदर हैं। उसी तरह से नदियों में जितनी भी नदियां हैं, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, निम्न गानांग जथा गंगा है ना, अब वैष्णवानांग जथा शंभो इत्यादि, नदियों में गंगा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। तो यमुना का क्या नहीं किया, यह सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए कि यमुना जी नदी नहीं है, वो तो कृष्ण प्रिया है, और विशाखा जी हैं, इसलिए नदियों के नाप में गणना नहीं किया, किंतु नदी के रूप में लेने पर भी ये सर्वश्रेष्ठ यही है। अनिर्वचनीय यमुना जी का महात्मा वर्णन करना बड़ा भारी कठिन है। अथवा क्यों ये श्रेष्ठ है यमुना, कृष्ण के अंगराग को अपने में धारण करती, है ना, मकरंद अंगों का मकरंद, उसके सुगंध के साथ में कृष्ण के अंगों का भी कुछ अंगराग भी लेकर के धो करके और अथवा कृष्ण के साथ में क्रीड़ा करती हुई गोपियों के कज्जल को लेकर के धारण करके और धो करके जो कालिंदी बन गई है, श्यामा बन गई है, उनका जल जल नहीं है, अमृत है। मुकुंद गीत श्रवण करके, मुकुंद पहले तो इसका अर्थ है ना मुक्ति ददाती, मुक्ति देने वाले, गोपियों का इसे कोई प्रयोजन नहीं, ये आत्माराम लोगों के लिए ये अर्थ हो सकता है। और दूसरा अर्थ है मुक्ति सुखम कुत्सितम कृत्वा प्रेमानंदम ददाती इति मुकुंद, जो मुक्ति सुख को भी अत्यंत घृणित समझा करके, अत्यंत घृणित है, निंदनीय है, प्रेमानंद देती है, प्रेमानंद जो प्रदान करते हैं वो मुकुंद है। किंतु गोपियों को तो प्रेम है, इसलिए इसकी इसकी भी आवश्यकता नहीं, इसलिए वो मुखम कुंद इव प्रफुल्ल प्रस्फुटित, कुंद फूल के समान जिनका मुख सब समय प्रस्फुटित होता है, सब समय मुस्कुराते हुए रहते हैं, और कुंद की भांति जिनका रूप मुखारविंद सब समय अत्यंत सुंदर मनोहर लगता है, उस पर बंसी थिरकती रहती है, इसलिए वो मुकुंद है। इसलिए बंसी बजा रहे हैं ये वेणुनाद, उसको गीत को सावधानी पूर्वक कानों के द्वारा हृदय में धारण करती है, तत्क्षणात् जल भ्रमरी का रूपे आवर्त सूचित काम वेगे भग्न तरंगाया, यमुना जी बह रही जा रही थी, इतने में कृष्ण ने उपवन में यमुना के निकट ही बड़े मधुर स्वर से वेणु गीत का गायन किया। यमुना जी ने उनकी तरफ में देखा और देखती ही रह गई, कानों से वेणु गीत का मधुर अमृत भाव उनके हृदय में चला, ये सबसे बड़ा विरोधी है। पशु चराते समय में मेघ साज ही कृष्ण का दर्शन कर लेते हैं, कोई रोक टोक, और हम कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकते, घर के पास ही उनका घर नहीं दर्शन कर सकते। किसी समय में यदि दर्शन भी हुआ या उनके बेणी नाद को भी हम सुने, किंतु मोह उपस्थित हो जाता है, मोह उपस्थित होने से कोई सेवा नहीं होती, मूर्छा आ जाती है, मूर्छा आने से क्या होगी, हम सेवा नहीं, हम उनको दर्शन ही नहीं कर पाती हैं, आंखें भर आती हैं, निकट से जा रहे हैं, मोह से हमारा शरीर जड़वत हो जाता है, उस समय उनकी कोई भी सेवा नहीं करती, उस समय दौड़ करके जा करके उनकी सेवा करें। इसलिए से ही मोह दशा में परम आरती प्रेमार्थी जनित शरीर इतना क्षीण हो जाता है, शक्ति रहित हो जाती हैं, कि हम किसी प्रकार से उनको छाता धारण करके अपने अंचल से ऐसे छाया करके, हमारे अंदर में शक्ति नहीं है कि हम पानी कहीं से लेकर के उसको सुशीतल बना दें, मैं कर सकता है, इसलिए वो अनुकूल सेवा करने के योग्य है, और हम लोग ऐसी महादुर्भागा है, उनकी कोई भी सेवा नहीं कर सकते, यदि मरे हैं तो हम लोग भगवान की ऐसी इच्छा हो नारायण की, तो हम मेघ बन करके आए जो उनकी सेवा करें। हम लोग कृष्ण की मोहन वेणुगीत सुन करके भी घर में आबद्ध रहती हैं, घर से निकल नहीं सकती, है हम सब प्रकार से भाग्यहीन हैं, और ये मेघ कितने प्रेम युक्त हैं कृष्ण के, इस प्रकार से आक्षेप करते हैं, उस समय में सचमुच ये परीक्षित महाराज जी भी आक्षेप करने लगे और इसके द्वारा उत्तरा में क्या हुआ, उनके भाव संक्रमित होकर के वो भाव आ रहे हैं वंचा पतितानाम पावने बोली कैसा गलत ठीक है। अच्छा और कोई है, आ जाओ, खूब लंबा नहीं, थोड़ा सा करना है तो वर्षा का समय अंधकार हो जाएगा, इन लोगों को जाना है, दे दो।
जय जय राधा।